आध्यात्मिकता की सच्ची कसौटी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान होने की कसौटी। देवियों, भाइयों, स्थूल शरीर को स्वस्थ निरोग बनाए रखने के लिए आहार विहार के नियमों का पालन करते हुए योग व्यायाम आदि की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही कर्मठता, क्रियाशीलता, सत्कर्मों आदि के द्वारा उसे स्वस्थ निरोग बनाए रखना पड़ता है, जैसा कि कल हमने निवेदन किया था। हमारा दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर कहलाता है।
इसे हम भावनाओं का, विचारणाओं का शरीर कहते हैं। परिष्कृत भावना ही है जो मनुष्य को मानव से महामानव बनाती है, नर से नारायण बनाती है।
आपने देखा होगा कि प्रेरणा देने वाली रामायण को कौन पढ़ता है?
हम उसे कहीं फेंक देते हैं, किंतु जो भावनापूर्वक पढ़ते हैं वे जानते हैं कि रामायण के निर्माण में श्रेय रामचंद्र का नहीं, भावनाओं का है। भावना ही है जिसने छोटे से राजकुमारों को न जाने क्या से क्या बना दिया, और वह भरत की भावना का श्रेय है जिसने रामचंद्र जी को भगवान बना दिया।
मित्रों, रामचंद्र जी भगवान हैं, भरत जी भगवान हैं, मुबारक हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं।
कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं है, इसके लिए एक ही कसौटी है, और वह यह है कि उसने आदर्शों को और उत्कृष्टता को कितनी मात्रा में अपने जीवन में कार्यान्वित किया। जितनी मात्रा में कार्यान्वित किया उतनी मात्रा में भगवान है, और जितनी मात्रा में उसने आदर्शवादिता का, उत्कृष्टता का उल्लंघन किया है उतनी मात्रा में बिना भगवान है। भगवान की और बिना भगवान की परख हम कैसे करेंगे? मुसलमान कहते हैं कि हम कैसे माने कि वे भगवान थे कि नहीं थे?
ईसाई भी नहीं मानते कि रामचंद्र जी भगवान थे।
हम भी कैसे मानेंगे?
हम तभी मानेंगे जब उनको उत्कर्षों की कसौटी पर कसते हुए चले जाएंगे।
जटायु के बलिदान से ले प्रेरणा।
मित्रों, रामचंद्र जी कसौटी पर खरे साबित होते चले गए और भगवान बनते चले गए। उनके छोटे भाई भरत भी उसी कसौटी पर खरे होते चले गए, और इस तरह रामायण बनती चली गई। हमको मुक्ति प्रदान करने वाली रामायण, हमारा उद्धार करने वाली रामायण, हमारी आंखों में आंसू भर देने वाली रामायण बनती हुई चली गई।
इसमें क्या है?
भावनाओं की उत्कृष्टता का, आदर्शवादिता का, चरित्र निष्ठा का, साहसिकता का, प्रेम का, मोहब्बत का, समर्पण का समुद्र भरा हुआ है। भक्त की आदर्शवादिता देखनी है तो जटायु की आदर्शवादिता को देखिए।
उसने जब सीता जी का अपहरण देखा तो कहा कि मैं बूढ़ा पक्षी हूं तो क्या हुआ, अगर हमारे आपके जैसा होता तो सोचता कि अरे भाई, फौज में भर्ती होने से क्या फायदा, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं,
अब तो जिंदगी के दिन पूरे करेंगे, नाती पोतों को खिलाया करेंगे। मित्रों,
नाती पोते तो रामचंद्र जी के भी थे और जटायु के भी थे, जिन्हें सवेरे गोदी में लेकर वह खिलाने जाया करता था। एक बार उसके जी में भी आया कि मुझे दुनिया से क्या मतलब।
यह तो रामचंद्र जी की भार्या हैं। रामचंद्र जी को मिल जाएगी तो रामचंद्र जी को नफा होगा,
नहीं मिलेगी तो वे दूसरा ब्याह कर लेंगे। तू काहे को इस झगड़े में पड़ता है, अपने पेड़ पर बैठा रहे और अपने मतलब से मतलब रख, अपने काम से काम रख और अपने नाती पोतों को खिलाया कर। मन की एक कमजोरी ने यह कहा तो दूसरा मन की कमजोरी के विरुद्ध खड़ा हो गया और जटायु का वर्चस्व जाग उठा। उसने कहा कि बूढ़ा हूँ तो क्या, रावण से मैं लड़ नहीं सकता हूँ तो क्या,
अनीति के विरुद्ध संघर्ष तो कर ही सकता हूँ।
वह अपने घोंसले में से निकला और रावण से लड़ने लगा। रावण ने कहा कि पक्षी तू पागल हो गया है क्या, तलवार तेरे पास नहीं, बंदूक तेरे पास नहीं, तू मेरा मुकाबला कैसे करेगा? उसने कहा कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता और तुम्हें मार नहीं सकता, जीत नहीं सकता, लेकिन जीत जाना ही काफी नहीं है। जीत जाना कोई आवश्यक नहीं है, हार जाना भी काफी है और मर जाना भी काफी है।
साथियों,
दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जीत नहीं मिल पाए, वे हार गए या मर गए और कुछ काम न कर सके। भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में हजारों मनुष्य ऐसे हैं जो जीत न सके, सफलता प्राप्त न कर सके,
जिन्होंने केवल मौत को गले लगाया लेकिन वे विजयी कहलाए।
जटायु ने भी कहा कि मारा जाने पर भी मैं विजयी बन जाऊंगा, और वह अपनी चोंच के सहारे रावण से लड़ने लगा। रावण ने तलवार उठाए और उसके पंखों पर दे मारी,
पंख कट गए,
जटायु जमीन पर पड़ा हुआ था।
भगवान रामचंद्र जी आए और उन्होंने अपने आंसुओं से जटायु को धोया, पानी से नहीं, आंसुओं से जटायु के घाव धोए जा रहे थे।
जटायु के घावों पर गांज पट्टी नहीं लगाई जा रही थी, बस भगवान राम अपनी बिखरी हुई जटाओं से जटायु के बाल साफ कर रहे थे, छाती से लगा रहे थे।
जटायु भगवान की छाती से चिपका हुआ था। कौन? साहसी जटायु, आदर्श के लिए मर मिटने वाला जटायु।
भावना के भूखे हैं भगवान।
मित्रों, भगवान को पाने का तरीका यही है, भगवान भावना के भूखे हैं।
चावल खिलाने वालों, रोटी खिलाने वालों, आरती उतारने वालों, तीन माला जपने वालों, भगवान के दिल दिमाग को समझो और पढ़ो कि भगवान की मोहब्बत किन लोगों के लिए सुरक्षित है। भगवान की मोहब्बत जटायु जैसे लोगों के लिए सुरक्षित है। भगवान की मोहब्बत गिलहरियों के लिए सुरक्षित है। जिस समय समुद्र बांधा जा रहा था, उस समय एक गिलहरी आए और अपने बालों में मिट्टी भरकर ले जा रही थी और समुद्र को भर रही थी। बंदरों ने कहा, गिलहरी, तू क्या कर रही है? उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? हम समुद्र में पुल बना रहे हैं।
क्यों? उन्होंने कहा, सीता जी को वापस लाएंगे, रावण को मारेंगे। तो मैं छोटी सी गिलहरी हूँ, तो क्या हुआ?
मैं भी अपने बालों में मिट्टी भरकर ले जाती हूँ और समुद्र में डाल देती हूँ, ताकि समुद्र पत्ता हुआ ऊंचा होता हुआ चला जाए और आप लोगों का रास्ता सरल होता हुआ चला जाए। गिलहरी की हिम्मत को देख करके बंदर उसे पकड़कर रामचंद्र जी के पास ले गए और उनके हाथ पर रख दिया।
भगवान राम ने उस छोटे से जानवर को देखा और पूछा, यह कौन है?
बंदरों ने कहा, यह गिलहरी है। यह क्या करती है? उन्होंने कहा कि यह अपने बालों में मिट्टी भरकर ले जाती है और समुद्र में पटक देती है।
क्यों? इसलिए कि हमारे समुद्र के पुल बांधने का मार्ग सरल होता हुआ चला जाए।
भगवान राम ने उसे कलेजे से लगा लिया,
छाती से लगा लिया
और प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरने लगे,
अंगुलियां फिराने लगे। भगवान राम की अंगुलियां काली थी,
इसीलिए कहते हैं कि काली अंगुलियों के निशान गिलहरी की पीठ पर अभी भी बने हुए हैं। जहां कहीं भी गिलहरियां दिखाई देती हैं, उनकी पीठ पर काली धारियां पाई जाती हैं। सुना गया है कि वे भगवान रामचंद्र जी की अंगुलियों के निशान हैं। क्या सच है क्या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि भगवान का स्वरूप यही है, भगवान की आदत यही है, भगवान की परख यही है।
कैसे मिलेंगे भगवान?
गायत्री मंत्र का जप करने के बाद में आपको भगवान के साक्षात्कार हो जाएंगे। मैं नहीं जानता कि हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे।
नहीं गुरुजी,
बता दीजिए कि कब हो जाएंगे।
बेटे, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ।
आप उस पंडा के पास जाइए जो आपका हाथ देखकर बता देगा कि कब तक हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं? मैं तो एक बात कहता हूँ कि अगर आपके भीतर वह साहस, आपके भीतर वह हिम्मत जिस दिन भी उदय हो जाएगी, उसी दिन आपको भगवान के साक्षात्कार हो जाएंगे।
उसी दिन भगवान आपको दर्शन देने के लिए आएंगे।
इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हे कमजोर तबीयत के लोगों, स्वार्थ और कायरता से भरे हुए लोगों, जब तक अपने मन की मलिनताओं को दूर नहीं कर सकोगे, तब तक भगवान को पाने का ख्वाब मत देखो। देखना है तो यह ख्वाब देखो कि हमको यह चीजें मिल जाएंगी, वह चीजें मिल जाएंगी।
मित्रों,
मांगने के लिए खड़े हो गए हो तो दुनिया में देने वाले भी हैं। देने वाले मिट नहीं गए हैं, जिंदा हैं। मांगने वाले जिंदा हैं तो दुनिया में देने वाले भी जिंदा हैं। दुनिया में बीमार हैं तो दवाखाने भी हैं, अस्पताल भी हैं। बेशक आप इसी बात पर कमर कसकर खड़े हो गए हैं कि हम दुनिया से मांग मांग कर लाएंगे और आप आशीर्वाद में मांग लेंगे। यद्यपि आशीर्वाद देने वालों की भी कमी नहीं है, वे भी हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि उन लोगों ने जो कमाया है, सिर्फ उन्हीं आधारों पर कमाया है जिसका हवाला मैं देता हुआ चला आ रहा हूँ। कमाने का और कोई तरीका नहीं है। उन्होंने जो कमाया है, सिर्फ उसी रास्ते से कमाया है और वे आपको भी दे सकते हैं, लेकिन उसी उदारता से प्रेरित होकर के जो आध्यात्मिकता के भीतर होनी चाहिए।
उदारता से विहीन मनुष्यों, तुम्हारे ही तरीके से वे लोग भी हैं जिनके यहाँ तुम मांगने जा रहे हो।
तुम्हारे लिए सब रास्ते बंद हो गए हैं। अगर द्वार खुले भी हैं तो इसलिए कि दुनिया में आध्यात्मिकता अभी जिंदा है।
आध्यात्मिकता के सिद्धांत को मानने वाले, उनका अनुकरण करने वाले लोग दुनिया में जिंदा हैं, जो जानते हैं कि अपना चरित्र और व्यक्तित्व ऊंचा उठाया जाना चाहिए और उसके द्वारा भगवान की संपदाओं को प्राप्त करने का अपने को अधिकारी बनाया जाना चाहिए।
आपको वरदान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए द्वार खुला हुआ है, बशर्ते आपके हृदय में वह उदारता विद्यमान होनी चाहिए और जिस तरीके से भगवान बच्चों को दिया करता है और भगवान के भक्त लोगों को दिया करते हैं,
आपको भी उसी उदारता के साथ देना चाहिए।
यही उनकी महत्ता है। यह आपकी नहीं, उनकी जीत है और आपकी हार है जो आप मांगने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जीत उन लोगों की है जो देते हुए चले जाते हैं। नहीं साहब,
मांगने वाला बड़ा होगा।
नहीं, मांगने वाला बड़ा नहीं हो सकता। नहीं साहब, हम मांग कर लाए हैं।
अच्छा,
तो फिर आपने उसका क्या किया? ध्यान रखना, किसी के कुछ लेने के बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा।
मित्रों, हम किसी का तप लेकर चले आए, किसी का वरदान लेकर चले आए,
इसको हमें लेने का क्या अधिकार था?
किसी का आशीर्वाद मांगने का हमको क्या अधिकार था?
ठीक है, लोगों ने दिया,
देने वाले बधाई के पात्र हैं, देने वाले महान हैं, देने वाले धन्यवाद के अधिकारी हैं।
फिर आप अपना चेहरा भी शीशे में देखिए और यह विचार कीजिए कि आप क्या उन विशेषताओं को अपने भीतर नहीं पैदा कर सकते थे जिनके द्वारा भगवान आपको भी इतना अनुदान देने में समर्थ हो गया होता और आपको किसी के आगे पल्ला पसारने का मौका न आया होता। साहस और विवेक जगाएं।
मित्रों, हमें अपना सूक्ष्म शरीर साहसिकता और विवेकशीलता के आधार पर विकसित करना चाहिए।
ऐसा साहस जो दुनिया में लड़ाई झगड़े के काम नहीं आता, वरन वह अपने आप से संघर्ष के काम आता है।
हमारे भीतर कुविचार और कुसंस्कार भरे हुए हैं।
हमारे भीतर कृपणता और संकीर्णताएं भरी हुई हैं, जिसने कि हमारी सारी क्षमताओं को सीमाबद्ध कर दिया और किसी के काम न आने दिया। हमारे पास जो चीजें थी, यदि वे समाज के प्रति लग गई होती तो न जाने उसका क्या से क्या स्वरूप हो गया होता।
जमुनालाल बजाज का पैसा गांधी जी के साथ लग गया था तो गांधी जी की शक्ति हजार गुनी हो गई थी। माधाता का पैसा जगतगुरु शंकराचार्य के साथ लग गया था और जगतगुरु शंकराचार्य की शक्ति हजार गुना हो गई थी।
अशोक का धन भगवान बुद्ध के साथ लग गया था और बौद्ध धर्म का स्वरूप न जाने क्या से क्या हो गया था। अगर आपका सहयोग उन कामों के लिए लग गया होता जिनसे आध्यात्मिकता का अभिवर्धन और मनुष्यता का सुधार संभव रहा होता तो न जाने दुनिया में आज क्या से क्या हो रहा होता। अगर आपने एक एक मुट्ठी सहयोग इन कार्यों के लिए दिया होता तो आज न जाने हमारे राष्ट्र का स्वरूप क्या से क्या हो गया होता।
राष्ट्र जगाने की भी तो सोचें।
मित्रों, एक गांव में 500 मनुष्य निवास करते हैं और हर आदमी बीड़ी पीता है। चवन्नी की बीड़ी से आजकल क्या हो जाता है। चार आने की तंबाकू हर कोई पी जाता है।
500 मनुष्यों का छोटा सा गांव है। चार आने रोज की तंबाकू पीने वाले लोगों का गांव है। यदि गांव की महत्ता को समझा होता और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहा होता और बीड़ी वाली चवन्नी को बचाकर अपने गांव के लिए विकास कार्यों के लिए खर्च करना शुरू किया होता तो 500 मनुष्य 500 चवन्नियां हर रोज बचाकर 125 रुपये रोज बचा सकते थे
और एक गांव में 4,500 रुपया एक महीने में बच सकता था।
एक वर्ष में 45,000 रुपये बच सकते थे। 500 मनुष्यों का छोटा सा गांव, चवन्नी वाला गांव ठीक ढंग से उपयोग कर सकने में समर्थ रहा होता तब उन 500 चवन्नियों से गांव में 45,000 रुपये बचाकर दे दिया होता तो उससे उस गांव में एक हाई स्कूल बन गया होता। एक वर्ष में कन्या विद्यालय बना दिया गया होता। 45,000 में प्रसूति गृह बना दिया होता।
इस तरह एक साल में न जाने क्या से क्या बना दिया होता। मेरे देश के निवासियों, आपने केवल उन कामों में पैसा खर्च किया है जिसमें नहीं खर्च करना चाहिए था। आप लोगों ने उन कामों में पैसा खर्च किया जिसमें कि मेरी बिरादरी का सत्यानाश हो गया। आपने मेरी बिरादरी के लोगों को, मेरे भाई और भतीजों को बिना मूल्य संस्कृत पाठशालाओं में रोटियां खिलाए और दान दक्षिणा के पैसों से मेरे बच्चे पढ़ते हुए चले गए। जब हमारे बच्चे संस्कृत पाठशालाओं में से निकलकर आते हैं तो वे सिवाय भीख मांगने के दूसरा काम नहीं कर सकते। वे सिवाय जन्मपत्रियां बनाने के दूसरा काम नहीं कर सकते। सिवाय ख्वाब देखने के दूसरा काम इनके पास नहीं है। सिवाय सत्यनारायण की कथा कहने के दूसरा काम वे नहीं कर सकते।
आपने मेरी सारी बिरादरी नष्ट कर डाली।
अभागे लोगों,
अपना स्वर पाने के लिए तुमने दान दिया और ब्राह्मण समाज को खा गए। दुष्टों, जिनका यह ख्याल था कि ब्राह्मणों को खिलाने के बाद हमें स्वर्ग भेज दिया जाएगा, उसका परिणाम क्या हुआ? मेरी सारी बिरादरी तेजहीन हो गई, वर्चस्वहीन हो गई और नष्ट हो गई, भिखमंगी हो गई। तुम लोग काय हो, यदि तुमने दान का मूल्य समझा होता और दान का स्वरूप समझा होता तो चवन्नियां बचाली होती और उन चवन्नियों से हर गांव का कायाकल्प कर डाला होता। अरे दिग्भ्रांत लोगों, भूले हुए लोगों, उल्टे रास्ते पर चलने वाले लोगों,
गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों,
तुम हर साल मंदिरों में सोने चांदी के छत्र चढ़ाते हुए चले गए, पंडाओं का पेट बढ़ाते हुए चले गए।
माल इकट्ठा होता चला गया, संपदा इकट्ठी होती चली गई और देश गलत दिशा में गुमराह होता हुआ चला गया। विवेकहीन लोगों की दानशीलता धिक्कार योग्य है। विवेकशील लोगों के लिए सामाजिक उत्कर्ष के लिए एक पैसा खर्च करना आवश्यक है।
सच्चे अर्थ में अध्यात्म।
मित्रों, मैं आपको निवेदन कर रहा था कि आपको अपना सूक्ष्म शरीर विवेकशीलता के आधार पर और साहस के आधार पर विकसित करना होगा, तभी आप सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकेंगे। मैं इन्हीं प्रयोगों को करता हुआ चला आ रहा हूँ और कारण शरीर की भूमिका में प्रवेश कर गया हूँ।
आप लोग जैसे जैसे कारण शरीर की भूमिका में प्रवेश करते हुए चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको अंतरात्मा का प्रकाश प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता हुआ चला जाएगा।
आध्यात्मिकता में कारण शरीर को साधना में संलग्न करने के दो रास्ते हैं। इनमें से एक का नाम प्रेम और एक का नाम सेवा है। प्रेम हमारे मन से छलकता हुआ चला जाए और यह दुनिया ऐसी बन जाए जैसे कि स्वर्ग है। इस पृथ्वी को स्वर्ग के रूप में परिवर्तित और प्रकट करने के लिए हमको इन पत्थर जैसे दिलों में प्रेम की धाराएं बहानी पड़ेंगी।
मित्रों,
लोगों ने केवल प्रेम का नाम याद कर रखा है, बेटे से प्रेम, औरत से प्रेम, दौलत से प्रेम, सिनेमा से प्रेम आदि। ऐसा प्रेम तो हर एक को आता है। सबसे बढ़िया प्रेम करना कौन जानता है? लकड़बग्घा जानता है। जब उसे कोई छोटा वाला बच्चा दिखाई पड़ता है तो वह उस पर टूट पड़ता है और उसे गड़प कर जाता है।
क्यों?
क्योंकि बच्चे पर उसका बड़ा प्रेम है।
बेटे, तुम्हारा क्या ख्याल है?
गुरुजी,
इस बच्चे पर मेरा बड़ा प्यार है। जिस तरह से छोटी वाली ककड़ी को देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है, जिस तरह से पकौड़ी को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है, हलवा को देख करके जैसे आपको प्यार आता है, वैसे ही सारे समाज के लिए आपका प्यार है। जब आप किसी की बहन बेटी को देखते हैं तो आपको वैसा ही प्यार आता है जैसे लकड़बग्घे को किसी का छोटा बच्चा देख करके आता है, जैसे कसाई वाले की दुकान को देख करके आपको प्यार आता है। यही प्रेम की विडंबना है जो आज सारे देश में फैली हुई है। पैसे से प्रेम, कुटुंब से प्रेम, यह प्रेम नहीं केवल मोह है, केवल स्वार्थ है, केवल संकीर्णता है। क्या है प्रेम?
मित्रों,
प्रेम दूसरी चीज का नाम है। प्रेम उस चीज का नाम है जिसमें कि आदमी दूसरों को खिलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाता हुआ चला जाता है, अपने आप को कष्ट में डालता हुआ चला जाता है और दूसरों को सुखी बनाता हुआ चला जाता है। प्रेम की एक ही दिशा है। भगवान से हम प्रेम करना सीखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कारण शरीर का विकास करने के लिए भगवान के साथ में प्रेम करना आवश्यक है। जिस तरह से हम व्यायामशाला में जाते हैं और डंबलों के साथ में अपनी कलाइयों को मजबूत करते हुए चले जाते हैं, उसी तरह से हम भगवान से प्यार करते हैं। वह भगवान जो अनंत शक्ति का भंडार है, सारे विश्व में समाये हुए हैं, जो करुणा के स्रोत हैं, जिनसे हम प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम आपसे संबद्ध होते हैं।
संबद्ध होने का अर्थ है आपके प्रकाश को ग्रहण करना,
आपकी उदारता, आपका प्रेम जो सारे विश्व में बिखरा हुआ है। पत्ते पत्ते के साथ में आपने जो मोहब्बत दिखाई, प्राणियों के साथ जो मोहब्बत दिखाई, मनुष्यों के साथ जो मोहब्बत दिखाई, संसार को सुख सुविधाओं से उत्प्रोत करने के लिए आपने जिस महानता का प्राकट्य किया, आपकी उस महानता को हम भी अपने जीवन में काम लाएंगे और वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे कि एक प्रेम करने वाले को करना चाहिए।
मित्रों,
अगर भावना हमारे जी में रही होती तो यह संसार आनंद और उल्लास से उत्प्रोत हो गया होता,
हमारा छोटा सा घर परिवार आनंद और उल्लास से भर गया होता। लेकिन आज हमारी मोहब्बत के तरीके बदलते हुए चले जा रहे हैं। भाई का भाई के साथ, बाप का बेटे के साथ, बहन का भाई के साथ, पति का पत्नी के साथ, सारे के सारे रिश्ते जैसे कमजोर होते हुए चले जा रहे हैं। जरूरत आज आध्यात्मिकता ही है। भगवान के साथ हमको प्रेम करना चाहिए और वह प्रेम ऐसा विकसित होना चाहिए जो सीमाबद्ध न हो।
जिस तरह हिमालय से निकलकर गंगा असीम बनती हुई गंगा सागर में जा मिलती है, हमें भी उसी तरह अपने प्रियतम से जा मिलना है। प्रेम की यही तो परिणति है। प्रायः लोग कहते हैं कि प्रेम करने वाले मनुष्य ठग लिए जाते हैं, खाए जाते हैं, घाटे में रहते हैं और नुकसान में रहते हैं।
लेकिन मित्रों,
मैंने अपने जीवन में यही अनुभव पाया है कि खिलाने वाला मनुष्य बहुत नफे में रहता है, केवल ठगने वाला मनुष्य ही घाटे में रहता है।
मित्रों,
घाटे में केवल एक ही आदमी रहा है जिसने दुनिया को ठगा, और नफे में वही आदमी रहा है जो स्वयं ठगा गया। कबीरदास जी ने कहा है,
कबीर, आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए।
कबीर ने प्रेम के आधार को निचोड़कर सबके सामने रख दिया है।
प्रेम का आधार मनुष्य जाति का विकास ही नहीं है।
एक आदमी दूसरे को देख करके जिए, यह काफी नहीं है।
वरन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विकास के लिए, दूसरे मनुष्य को शांति प्रदान करने के लिए अपने सारे अनुदान समर्पित करते हुए चला जाए,
यही प्रेम का आधार है। यदि यही प्रेम मनुष्य के मन में से फूटने लगे और हमारा अंतरतम आनंद से भर जाए, हमारा जीवन आनंद से भर जाए, यदि हम सभी आपस में एक दूसरे को अपनों की भांति प्रेम करने लगे तो हमारा समाज विकास से, आनंद से भर जाए।
मित्रों,
हमने क्या अपने जीवन को प्यार किया? नहीं, हमने अपने जीवन को प्यार नहीं किया।
हमें भगवान का कितना बहुमूल्य अनुदान मिला था जिसका हमें उपयोग करना चाहिए था, लेकिन हमने उसे उन निरर्थक क्रियाकलापों में खर्च कर डाला जिनका न तो कोई मूल्य था और न कोई महत्व था,
जो केवल जानवरों के करने लायक क्रियाकलाप थे। केवल उन्हीं क्रियाकलापों में हमारा सारा जीवन खर्च हो गया। जीवन, मैंने तुझे बहुत सताया और तेरा बड़ा दुरुपयोग किया। हे जीवन, आ, अब तुझे प्यार करें, तुझे महान बनाएं,
तुझे ऐतिहासिक बनाएं, तुझे ऐसा बनाए जिसकी रोशनी से अनेक मनुष्य प्रकाश प्राप्त करते हुए चले जाएं। आ जिंदगी, तुझे प्यार करूं।
अगर हम अपनी जिंदगी को प्यार कर सकते हो तो मित्रों, हमारी जिंदगी कितनी शानदार हो सकती है।
मित्रों,
आज हम कितनी ही गई गुजरी परिस्थितियों में क्यों न हो, कितनी ही छोटी परिस्थितियों में क्यों न हो, यदि हम अपने जीवन को प्यार करने लगे, जीवन को सार्थक बनाने वाले सिद्धांतों को क्रियान्वित करने लगे, तो हम छोटे छोटे मनुष्य, दीपक जैसे मनुष्य अपने चरित्र में प्रकाश पैदा कर सकते हैं, और वह प्रकाश दिवाली की अंधियारी अमावस्या के दिन पूर्णिमा का प्रकाश उत्पन्न कर सकता है और हर जगह प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। यदि हम और आप जैसे छोटे छोटे दीपक इस तरह अपने जीवन में प्रेम उत्पन्न करना सीख सके, यदि हम अपने भगवान को प्यार करना सीख सके, तो मजा आ जाए। प्यार करने का अर्थ दंडवत करना नहीं है, प्यार करने का अर्थ परिक्रमा करना नहीं है, प्यार करने का अर्थ है भगवान की आकांक्षाओं की पूर्ति करना और भगवान के सुंदर रूप का निखार करना है।
सारा विश्व भगवान का सुंदर स्वरूप है,
उसमें से शांति नष्ट हो गई है,
सुव्यवस्थाएं नष्ट हो गई हैं, सौजन्य नष्ट हो गया है।
इस स्नेह और सौजन्य का अभिवर्धन करने के लिए हम अपना एक अनुदान दे सकते हो, अपना वक्त खर्च कर सकते हो, समय लगा सकते हो, अपनी क्रियाशीलता को सक्रिय कर सकते हो, तो मित्रों,
यह विशुद्ध भगवान का प्यार है।
यही वह भावना है जो हमें ईश्वर के समीप ले जाती है और हमें नर से नारायण बनाती है।
आज की बात समाप्त। ओम शांति।